ओम शांति। ब्राह्मण जीवन का आनंद अनुभव करने के लिए या ब्राह्मण जीवन सदा खुशी से भरपूर रहे, उसके लिए सभी ईश्वरीय शक्तियों की जरूरत रहती है। बाबा ने हम सबको बहुत शक्तियां दी हैं, लेकिन मुख्य रूप से आज दो शक्तियों पर चर्चा करेंगे। मुरली 18 जुलाई 71, इस मुरली में दो शक्तियों के ऊपर बाबा ने प्रकाश डाला है या हम सबको दो शक्तियां प्राप्त करने की विधि बताई है। वो दो शक्तियां नहीं आती, उसका कारण क्या है, प्राप्त करने के लिए कौन कौन से उसमें हमको तरीके चाहिए, कौन कौन से ध्यान रखने की जरूरत है। तो मेन दो शक्तियां हैं विल पावर और दूसरा जो हम नहीं बताएंगे वो उनकी टर्न है, कैचिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर। ठीक है, मैंने पढ़ा हुआ है आपने, कंट्रोलिंग पावर। तो विल पावर कैसे आएगी? विल पावर, वैसे विल होता है अर्पण करना, समर्पण करना, लेकिन विल पावर इच्छा शक्ति, उसकी भी बाबा ने विधि बताई कि विल पावर कैसे बढ़ेगी। वैसे भी कोई भी हम कार्य करते हैं तो विल पावर बहुत आवश्यक है, इच्छा शक्ति। किसी कार्य को करने की अगर शक्ति नहीं है, इच्छा नहीं है हमारे अंदर, तो कार्य भी ऐसे ही होता है। जितनी दृढ़ इच्छा है, तीव्र वेग से वो इच्छा है, उतना कार्य भी सफल होता है, उतना जल्दी होता है, उसमें रुचि होती है, इंटरेस्ट होता है। इस मुरली में बाबा ने 5-6 एग्जाम्पल दिए हैं और बाबा की मदद अनुभव करने के लिए भी क्या चाहिए वो भी बताया है। तो एक एग्जाम्पल दिया बाबा ने बिजनेसमैन का। बिजनेसमैन जो होता है उसका बिजनेस बड़े, उसके अंदर विल पावर होती है, नए नए तरीके ढूंढते हैं बिजनेस को बढ़ाने के लिए। और अच्छे बिजनेसमैन अपने ऊपर कर्ज नहीं रखते हैं, जो भी होता है हिसाब का वो क्लियर कर देते हैं। अगर कोई कर्ज रह जाता है तो फिर वो कर्ज मर्ज का रूप ले लेता है, अर्थात टेंशन, डिप्रेशन, चिंताएं, फिर उसका उतना ग्रोथ नहीं होती है उसके बिजनेस की। तो एक बिजनेस का एग्जांपल दिया बाबा ने। भक्ति मार्ग का एग्जांपल दिया है, भक्ति मार्ग में अर्पण कैसे करते हैं, इधर अर्पण कैसे है। एक हंस का एग्जांपल दिया है, हंस क्या चुगता है, माना अंतर करता है दूध और पानी का, हमें कौन सा अंतर करना है। इस तरह पे एक एग्जाम्पल बाबा ने अपने ऊपर ही दिया है कि जैसे बाप है वैसे बच्चों को क्या करना है, जैसे बाप के संबंध है बच्चों के भी, ऐसे तीन दिन में जो बदलती अवस्थाएं हैं उनके ऊपर बाबा ने विस्तार से बताया। तो बाबा कहते हैं दोनों पावर जो है इस ब्राह्मण जीवन में अति आवश्यक है, विल पावर भी और कंट्रोलिंग पावर भी। अगर ये दोनों पावर तो नहीं है तो ना स्वयं की उन्नति ठीक होगी ना औरों की उन्नति करा सकते हैं। तो स्वयं की उन्नति के लिए भी जरूरी है, दूसरों की उन्नति अगर माना हम करना चाहते हैं, दूसरों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो स्वयं के अंदर विल पावर अति आवश्यक है। और विल अर्थात क्या, जो संकल्प करते हैं, जो बोल है, जो कर्म है, वो अर्पण करना। अगर दूसरों के अंदर व्यर्थ है तो व्यर्थ भी दूसरों का अर्पण करना बाप के आगे। अगर स्वयं के अंदर ही पावर नहीं है तो न स्वयं का अर्पण कर सकते हैं न दूसरों का अर्पण कर सकते हैं। और जितना जितना बाबा कहते अर्पण करते जाएंगे उतना उतना ये जीवन जो है दर्पण बनता जाएगा, बाप के आगे अर्पण करने से ये जीवन दर्पण बनता जाएगा। और दर्पण जो है वो साक्षात का स्पष्ट कराता है, जितना जितना अर्पण करेंगे, दर्पण बनेंगे, समर्पण में अवस्था होगी तो साक्षात्कार भी स्पष्ट हो जाता है, फिर स्वतः अर्पण में अवस्था उस दर्पण से दिखाई देती है। तो इसके लिए जो भी हमारी कमी कमजोरियां हैं वो हम बाप के आगे अर्पण करते रहें। इसके यहाँ पर बाबा ने एक एग्जांपल दिया भक्ति मार्ग का, जैसे भक्ति मार्ग में अर्पण करते हैं लेकिन वो जानते नहीं है, जो भी करते हैं, जो भी खाते हैं, चलते हैं, हर बात में समर्पण अर्पण करते हैं, जिससे जैसे आहुति भी डालते समर्पण हम ही कहते हैं समर्पण के लिए, लेकिन वो जानते नहीं है। तुम बच्चे यथार्थ रीति से जानते हो। तो बाबा कह रहे जो भी संकल्प है, बोल है, कर्म है, वो बाप के आगे अर्पण कर दो, तो स्वतः ऑटोमेटिकली दर्पण बन जाएंगे और दर्पण से स्वतः आपकी अर्पण में अवस्था दिखाई देगी। तो दोनों शक्तियां आवश्यक है इसके। फिर बाबा ने आगे कंट्रोलिंग पावर के बारे में बोला, कंट्रोलिंग पावर के ऊपर विस्तार डालेंगे। और इसके लिए दोनों पावर तब आएंगी जब आपके आगे एक अंतर सामने होगा, और उसके आगे फिर मंत्र भी चाहिए, महामंत्र भी चाहिए। तो अंतर दो बातों का बताया, हमेशा बाबा कहते हैं सत्य असत्य, राइट रॉन्ग, शुद्ध अशुद्ध, समर्थ व्यर्थ, स्मृति विस्मृति, ये चार बातों का बाबा कहते अंतर हमेशा अपने सामने रखो। अगर अंतर हमारे सामने है तो जो नीचे वाली चीज है वो स्वतः छोड़ देंगे, जिस चीज से हमारा कल्याण है तो हम स्वतः उस चीज को पकड़ेंगे। तो श्रेष्ठ चीज कौन सी है, शुद्ध है या अशुद्ध है, समर्थ है या व्यर्थ है, स्मृति है विस्मृति है। तो ये चार चीजें यहाँ पर बाबा ने प्रकाश डाला इसके ऊपर कि स्मृति हमेशा स्मृति में रहे। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हंस का, तो जैसे हंस क्या करता है, मोती चुगता है, कंकड़ छोड़ देता है, तो तुम बच्चों को भी ये अंतर हमेशा सामने रहे। तो आप महामंत्र को, फिर महामंत्र को भी सामने रखेंगे, और विल पावर अनुभव करने के लिए या प्राप्त करने के लिए, विल पावर बढ़ाने के लिए महामंत्र चाहिए। और महामंत्र है मन मना भाव, दूसरे शब्दों में है तो मन मना भाव कही, लेकिन महामंत्र या बाबा ने कहा बाप की याद है, तो मन मना भावी बाप की याद या बाप की शक्ति से बाप के गुणों को बाप के कर्तव्यों को याद करते रहेंगे तो विल पावर बढ़ती जाएगी, और विल पावर बढ़ती जाएगी तो हम सिद्धि को भी सहज प्राप्त करेंगे, सफलता संपूर्णता सहज अनुभव होगी। इसके पहले बाबा ने दो बार एक हाथ और बताई है कि संपूर्ण सिद्धि को भी कब पा सकेंगे यथार्थ विधि होगी। और हाँ नहीं, इसी में भी है ये 71 वो अलग है, वो यथार्थ विधि वाली संडे। तो संपूर्ण विधि को दो बातें कौन कौन सी है, अंतर और महामंत्र, महान अंतर महामंत्र महामंत्र, तो संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त कर सकेंगे। तो यहाँ ये वाली चीज है कंट्रास्ट मेथड, जो मुरली के बीच में एक ही मेथड आया कंट्रास्ट मेथड, तुलना, एग्जांपल मेथड भी हो गया, एग्जांपल मेथड भी हो गया। अब इसके आगे फिर बाबा ने कहा कि जैसे बाप को आप मुख्य तीन संबंधों से याद करते हो, वैसे तो सारे संबंध है लेकिन मुख्य तीन संबंधों से याद करते हो, ऐसे तुम बच्चों को भी सारे दिन में तीन अवस्थाएं होती है। सबसे पहले बाल अवस्था, फिर युवा अवस्था, फिर वृद्ध अवस्था, वो बाद में इसको है। उसके पहले ये लौकिक से तुलना की गई है, हाँ मृत्यु, फिर उसके बाद मृत्यु, चौथी बोला तीन ही लेकिन चौथी मृत्यु, क्योंकि मृत्यु का तो पता नहीं ना रहेगा, अवस्था तो तीन ही होगी। तो पहले बाल अवस्था में, फिर युवा अवस्था, फिर वृद्ध अवस्था, फिर अंत में मृत्यु, तो निश्चित ही है। तो इन तीन अवस्थाओं को बाबा ने बाल अवस्था, अर्थात बाबा कहते जैसे सवेरे आप बच्चे उठते हो तो सबसे पहले बाप से क्या करते हो, रूरवान करते हो, कैसे बालक बन के रूरवान करते हो, और रूरवान करते करते कौन सी अवस्था का अनुभव होता है, फिर मालक की अवस्था का अनुभव होता है। तो बालक सो मालक, ये हमारी प्रारंभिक अवस्था है सवेरे की, अमृत वेले उठते ही सवेरे इस अवस्था का अनुभव करते हैं बालक सो मालक। उसके बाद फिर गॉडली स्टूडेंट लाइफ, फिर तीसरी अवस्था है सेवादारी, जब हम कर्म क्षेत्र पहुंचते हैं तो सेवादारी की क्या क्या निशानियां हैं, उसकी क्या क्या विशेषता है, क्या क्या योग्यता, क्या क्या स्मृति में चाहिए उसके ऊपर। फिर अंत में जैसे बताया कि वृद्ध अवस्था के बाद मृत्यु, तो यहाँ जो है सेवादारी के बाद फिर रात को सोने का टाइम आता है। तो सोते समय बाबा ने कहा सारा हिसाब किताब बाप के आगे अर्पण कर दो, बाप के आगे अर्पण करने से निश्चिंत हो गए। फिर उसमें सोने में बाबा ने यह भी कहा कि अगर आप दे के सोते हैं, बाबा को हिसाब किताब बता के सोते हैं, तो चुप तो करके सोते तो निश्चिंत अवस्था होगी, स्वप्न आना दूसरी बात है बाबा कहते, लेकिन निश्चिंत अवस्था होगी। तो उसमें हम सारा हिसाब किताब चुप तो करके सोते हैं। यहाँ फिर एग्जांपल दे जैसे बिजनेसमैन, तो बिजनेसमैन जो लोग होते हैं वो अच्छा बिजनेस करने के बाद शाम को सारा हिसाब किताब चुप तो करते हैं, कहाँ कोई कर्ज रहता है तो उसको भी पूरा खत्म करके सोते हैं, नहीं तो चिंता लगी रहती है, अगर कर्ज है तो फिर वो कर्ज मर्ज का रूप ले लेता है। ऐसे ही अगर हम अपनी अवस्था को बाबा को बता के नहीं सोते हैं तो सारे दिन की बातों का प्रभाव, कर्म संकल्पों का प्रभाव वो हमारी अवस्था के ऊपर रहता है, और जिस अवस्था में हम सोते हैं वही अवस्था फिर अगले दिन के लिए तैयार होती है। यहाँ फिर एक और एग्जाम्पल दिया, जैसे संस्कार जो करते हैं या आत्मा जब शरीर छोड़ती है, जो संस्कार जाते हैं उसमें उन्हीं संस्कारों के अनुरूप फिर अगला जन्म मिलता है। तो वो हमारे संस्कार जो है, अगर न्यारे प्यारे के संस्कार हैं, सोते समय हम अपना सारा हिसाब किताब बाबा को दे रहे हैं, तो सोने के बाद जब हम सवेरे उठेंगे तो उठते हुए भी वही संस्कार न्यारे प्यारे की अवस्था के संस्कार होंगे। तो यहाँ ये बात थी कि मृत्यु भी एक जन्म है, वो अगले जन्म में हम जैसे, हाँ ये सोना भी एक जन्म है। हाँ, माने सो रहे हैं मृत्यु के बाद, जैसे रात को हम सो गए, मृत्यु हो गई, और सवेरे हमारा एक नया जन्म हो, नए विचारों के साथ हम उठे हैं, एक नए दिन की शुरुआत है, नई रात नया दिन, और नई शुरुआत है, नए विचारों का प्रादुर्भाव होता है वहाँ। तो उससे और वो कौन से होंगे, जो हम पहले से लेके गए हैं। नहीं, मम्मी पापा को बदल सकते हैं, आप उठ के उनको कह सकते हैं कि रात वाले मम्मी पापा नहीं दिख रहे, क्योंकि वैसे हर पल तो बदल रहा है सारा, उनके वो भी सोएंगे, उनकी मृत्यु निश्चित है, उनके स्वास्थ्य संस्कार भी बदलेंगे, तो जो पहले एक रात पहले वो वाले मम्मी पापा नहीं रहेंगे, नाम भले वही रहेगा उनका। तो यहाँ ये बात थी कि अपना जो हिसाब किताब सारा बाप के आगे अर्पण करके सोएंगे तो अगले दिन में भी वो जो शुरुआत होगी उसी तरह नए तरीके से नए विचारों के साथ शुरुआत होगी। इसके बाद फिर बाबा ने साइलेंस बल की और साइंस की भी तुलना की है, साइंस और साइलेंस, संस्कारों को मिटाने की बात ही है। तो जैसे साइंस वाले मिटाने की बहुत सारी चीजें निकाली हैं, दाग नजर नहीं आता, बिल्कुल साफ क्लीन हो जाता है, तो ऐसे आप साइलेंस के बल से अर्थात याद की अग्नि से, योग के बल से अपने हिसाब किताब तो चुकतो करके सो जाओ या चुकतो कर दो, तो अगले दिन के लिए वो हिसाब किताब नहीं रहेगा, तो अपने हिसाब किताब तो चुकतो करना है। और एक और बात इसमें सच्चाई सफाई की बात है, अर्थात जिस टाइम साफ करके सोते हैं तो जहाँ सफाई है वहाँ सफाई को सच्चाई के साथ जोड़ा गया है, तो सच्चे दिल पर, यहाँ एक कहावत है सच्चे दिल पर साहब राजी, अर्थात सच्चाई सफाई है तो हमारा रजिस्टर भी साफ होने के बाद साहब भी राजी हो जाएगा, और जहाँ हिम्मत है वहाँ मदद मिलेगी। तो ये सारी बातें करने के लिए हिम्मत है तो बाप की मदद में मिलेगी, तो सच्चे दिल पर साहब राजी। और इसके अलावा अब सारा कंट्रोलिंग पावर के ऊपर ही है, विल पावर के ऊपर हो गया। तो विल पावर के ऊपर बाबा ने, विल पावर कंट्रोलिंग पावर के ऊपर मुरली सारी घूम रही है, तो इसमें विल पावर प्राप्त करने के लिए बाबा ने महामंत्र दिया, बाप की याद। बाप की याद अर्थात बाप के गुण, बाप के कर्तव्य, बाप की विशेषताएं शक्तियां, अर्थात उनको याद करेंगे तो हमारा कनेक्शन पावर हाउस से जुड़ा रहेगा, और अगर पावर हाउस से कनेक्शन है तो हमारी बुद्धि उसमें विल पावर बढ़ती जाएगी और सफलता, तुरंत सफलता और संपूर्णता और सफलता का अनुभव करेंगे। इसके लिए बाबा ने कहा इस महामंत्र को, और दूसरा एक अंतर बताया कि हमेशा अंतर को सामने रखो, क्या करना क्या नहीं करना। उसमें एग्जांपल दिए दो चार, जैसे अंतर हमको अगर मालूम होता है तो हम नीचे वाली चीज को कभी नहीं पकड़ते, जो श्रेष्ठ चीज होती है उसी को पकड़ते हैं। तो सत्य असत्य, शुद्ध अशुद्ध, स्मृति विस्मृति, व्यर्थ और समर्थ, ये चार चीजें वहां जिक्र किया इस चीज का। और एग्जाम्पल दिया एक बिजनेसमैन का, जैसे बिजनेसमैन अपना सारा हिसाब किताब पोता मेल दे के अपना पूरा दिनचर्या समाप्त करता है, कोई भी कर्ज नहीं रखता है, अगर कर्ज रहा है तो वो मर्ज का रूप ले लेता है। इसी तरह से हम बच्चों को भी अपने सारे दिन का हिसाब किताब बाप के आगे अर्पित करके सोना है, सारे संस्कारों को मिटा देना है, तो जिन संस्कारों के साथ हम सोएंगे उन्हीं संस्कारों के साथ अगला फिर नया सवेरा होगा। न्यारे प्यारे के संस्कार होंगे तो न्यारे प्यारे की अवस्था में अगला दिन की शुरुआत होगी। तो संस्कारों अपने पुराने जो भी सारा हिसाब किताब है बाप को देकर निश्चिंत अवस्था में सो जाओ। तो ये बात थी, एक भक्ति का एग्जांपल था, अर्पण की बात थी वहाँ, कि जो भी हमारा संकल्प बोल कर्म है उसके लिए दो पावर चाहिए। अगर दूसरों का भी अर्पित करना है, बाप के आगे अर्पण करना है, तो पहले स्वयं को अर्पण होना पड़ेगा। अगर स्वयं की हमारी अर्पण में अवस्था नहीं है तो दूसरों को अर्पण कैसे करेंगे, समर्पण कैसे करेंगे। और जितना जितना बाप के आगे अर्पण होते जाएंगे उतना हम स्पष्ट दर्पण बनते जाएंगे, और दर्पण मन से बनने से स्पष्ट साक्षात्कार होगा हमारी चाल चलन बोल व्यवहार से, तो स्पष्ट उसका साक्षात्कार होगा, ये अवस्था हो जाएगी। तो ये एग्जाम्पल था भक्ति मार्ग का, अर्पण में अवस्था का, एक हंस का एग्जाम्पल हो गया जो कंपेरिजन करना है, बिजनेसमैन का एग्जाम्पल हो गया, एक फिर है इसका साइंस और साइलेंस का एग्जाम्पल है। दो एग्जाम्पल और हैं, कोई छोटे छोटे हैं। एक ये वाला एग्जाम्पल, जो बाल अवस्था, बाप के संबंध और हमारे संबंध। बाप उस तरीके से बाबा ने यहाँ बताया कि बाप टीचर ग्रुप, वैसे तो सर संबंध है, लेकिन तुम बच्चों के जो मुख्य तीन अवस्थाएं होती है, जो लौकिक अवस्थाएं गिनाई है, बाल, युवा या वृद्ध। इसी तरह यहाँ कौन सी है, बालक सो मालिक, अमृत वेले उठते ही। और दूसरी अवस्था है फिर गॉडली स्टूडेंट। तीसरा सेवादारी, और अंत में बाप को हिसाब किताब देकर। तो जैसे वहां मृत्यु होती है तो संस्कार हो जाते हैं, उसी तरह सारा हिसाब किताब बाप के आगे रजिस्टर साफ करके सो जाएंगे, तो फिर आपका भी अगला दिन उसी तरह से शुरुआत होगा। एक चक्कर है 5000 चक्कर का चक्कर लास्ट में, वो सच्चाई सफाई वाले दिन में, कि जैसे शुरुआत में बाबा कहते ड्रिल कराते थे बच्चों को, चक्कर के अंदर चक्कर कराते होंगे, ड्रिल कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी कराते होंगे बाबा पहले भी, तो चक्कर के अंदर चक्कर चलता था। तो यहाँ भी बाबा ने कहा एक दिन का चक्कर है, तो इस चक्कर में भी आप बच्चे इस चक्कर को भी क्या करो, हाँ सृष्टि के चक्कर में अनेक चक्कर हैं, तो ये वाले चक्कर हैं, इनको भी क्लियर करो। यहाँ फिर मिटाने वाली बात कही है, साइंस और साइलेंस की बात है, तो अपने स्वास्थ्य संस्कार मिटा दो, साफ कर दो। सच्चाई सफाई है, जितना साफ सच्चाई सफाई होगी उतना साफ भी राजी रहेगा। हिम्मत होगी तो मदद भी स्वतः मिलेगी, ठीक है। हाँ, धारणा के लिए मुख्य सार, इसमें धारणा की बातें कौन सी आ गई। एक तो सच्चाई सफाई चाहिए मन में, तो बाप की मदद मिलेगी। तो सारे दिन में सच्चाई सफाई से रहना है, बाप के आगे अपना पूरा पोता मेल देना है, हिसाब किताब चुकतू करने है। ये पहला पॉइंट है धारणा का। और दूसरा रात, ये तो सच्चाई सफाई देना, हिसाब किताब चुकतू देना। दूसरा है महान अंतर, महान अंतर सामने रखना है और महामंत्र को हमेशा याद रखना है। और सवेरे सवेरे उठकर बाप से रूरवान करनी है, बालक सो मालिक बनकर, बालक बनकर रूरवान करनी और मालिकपन का अनुभव करना है। और गॉडली स्टूडेंट की हमेशा स्मृति रखनी है। और सेवादारी बनकर निमित्त बाप समझना है, अहंकार को छोड़ देना है। मानो सेवादारी के बीच में सार में आ जाएगा। पुराना खाता खत्म कर देना, चुकतू कर देना, भस्म कर देना, योग अग्नि से, याद की शक्ति से, बाप के गुणों को याद करने से, बाप के कर्तव्यों को याद करने से। साइंस और साइलेंस और वरदान, हाँ वरदान भी इस मुरली से बना देते ना, एक स्लोग भी बना देते एक। हाँ, सच्चाई सफाई को दिल में धारण करने वाले बाप की हिम्मत, बाप की मदद के पात्र बाबा। ये आगे प्रदान, अब इसमें आप विस्तार कर सकते हो। हाँ, महान अंतर और महामंत्र को याद रखो तो दोनों बिल पावर और कंट्रोलिंग पावर स्वतः आ जाएगी। ओम शांति, लो ये स्लोगन हो गया क्या।
ओम शांति, पूरी मुरली रिवाइज हो चुकी है, ठीक है। तो हमको कहा था कि कंट्रोलिंग पावर पर बात करनी है, तो कंट्रोलिंग पावर जब शब्द आता है तो उसका अर्थ होता है जैसे कि शासन करना या किसी को अपने काबू में करना, इसका अर्थ है नियंत्रण में रखना। तो कंट्रोलिंग पावर जब वर्ड आता है तो हम किसको याद करते हैं, कौन याद आता है कंट्रोलिंग पावर? तो जैसे ड्राइवर, राजा, तो राजा याद आता है, शासन याद आता है, तो कंट्रोलिंग पावर। तो ऐसे ही बाबा हमेशा जब कंट्रोलिंग पावर की बात करते तो हमारे जो फाइव सेंसेस है, कर्मेंद्रियों पर कितना हमारा कंट्रोल है उस पर बात होती है। तो जैसे आंखें हैं, तो आंखें किसको देखनी चाहिए, किसको नहीं देखनी चाहिए। मुख है, तो जैसे कि कितना बोलना चाहिए, कितना नहीं बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, कब चुप रहना चाहिए, इस सब पे कंट्रोल। मुख में जीभ भी आती है, खाने पर कितना कंट्रोल है हमारा, अच्छी चीज है तो ज्यादा खा लिया, या हमको अच्छा नहीं लग रहा है तो कम खा लिया, ऐसे नहीं, कितना हमारा भोजन पर कंट्रोल है। फिर कान है, कानों से हम कितना किसको सुनना है, किस बातों को नहीं सुनना है, इन सब चीजों पर कंट्रोल। तो दूसरे जैसे कहा कि ड्राइवर, तो हम जब कंट्रोलिंग पावर पर सोच रहे थे तो हमको याद आ रहा था जैसे कि कार, जब कोई कार चलाता है तो उसमें भी बहुत कंट्रोलिंग पावर की आवश्यकता होती है। हाँ, नहीं तो पत्थर टूट जाता है बस। तो कंट्रोलिंग, तो उसमें भी जैसे कि दो चीज है, एक डायरेक्शन और एक स्पीड, दो चीज पर कंट्रोल की आवश्यकता है। तो डायरेक्शन और स्पीड पर जैसे हमारा कंट्रोल, तो कंट्रोलिंग पावर जब हम याद करते हैं तो हर धर्म में देखते हैं तो कंट्रोलिंग पावर की लाइक यूज किया है उसको, जैसे कि हिंदुइज्म में उपवास रखते हैं, तो उपवास रखना भी एक कंट्रोलिंग पावर ही है कि वो अपने जीभ पर कंट्रोल करते हैं। या तो कोई फास्ट में ऐसा होता है कि बस साबूदाना खिचड़ी खाएंगे, दूसरी चीजें नहीं खाएंगे, तो जैसे ये कंट्रोल है उनका कि ये हम नहीं खाएंगे। जब नवरात्रि का फास्ट वो लोग रखते हैं तो सॉल्ट नहीं खाते, तो नहीं वो चीजों को पे कंट्रोल करते हैं वो लोग। जैसे इस्लाम में फास्ट रखते हैं जब रमजान में, तो मॉर्निंग से लेके शाम तक पूरा की पूरा कंट्रोल होता है खाने पर पीने पर, उसके बाद जितना खाओ वो ठीक है, लेकिन तब तक सहरी से इफ्तारी तक सहरी में खाएंगे और फिर उसके बाद इफ्तारी में खाएंगे वो, तो तब तक कंट्रोल होता है। उसके अलावा उसमें कंट्रोल होता है कि आप टीवी नहीं देख सकते, मतलब आप कोई मूवीज नहीं दे सकते, तो आंखों पर कंट्रोल होता है उस पर का, आप कोई फिल्मी गीत नहीं सुन सकते उतने टाइम तक जब आपका फास्ट है। यहाँ तक कि काम विकार से भी है ना फास्ट रखते है वो उतने समय के लिए, तो ये सब कंट्रोलिंग पावर है उसमें, सिर्फ आपको इबादत करनी और कुछ नहीं करना। और जैसे कि जैन साध्वी हम देखेंगे, उनकी लाइफ को भी अगर आप गौर से देखो तो उनमें भी बहुत सारी कंट्रोलिंग पावर है, कितनी वो साधना करते हैं। ऐसे ही जीसस क्राइस्ट की लाइफ में हम देखते हैं तो कहीं लिखा था कि 40 दिन तक उसने भोजन नहीं खाया और शैतान उसको बहुत उकसाता है कि तू खा ले, है ना, तो मैं तुझे खाना दूंगा, लेकिन वो नहीं खाता है क्योंकि वो वहां पर अपनी कंट्रोलिंग पावर को यूज करता है। तो ऐसे अलग अलग जगह पर कंट्रोलिंग पावर यूज होता है। ऐसे ही हमारा जो ट्रैफिक कंट्रोल है वो भी कंट्रोल ना, तो जैसे कि हमारे थॉट्स के ऊपर कंट्रोल, और यहाँ पर 5 सेंसेस के साथ थॉट्स भी आते कि हमारा हमारे विचारों पर हमारे संकल्पों पर हमारा कितना कंट्रोल है। ऐसे ही जो ट्रैफिक पुलिस होता है वो है ना ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, तो देखो कंट्रोलिंग पावर कितनी यूज होती है। तो हम सोच रहे थे इन सब इंद्रियों में कंट्रोलिंग पावर जब यूज करते हैं, तो जैसे मुख है, अगर हमको नहीं बोलना है तो हम हमारे लिप्स बंद कर सकते हैं तो हम नहीं बोलेंगे, या हमको नहीं खाना है तो हम मुख बंद कर सकते हैं। आंखें है, अगर हमको कुछ नहीं देखना है तो हम हमारी आंखें बंद कर लेंगे तो हमको कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन कान, हम साइंटिफिक वे से सोच रहे थे, कान एक ऐसी सेंस ऑर्गन है जिससे हम चाहते हुए भी उसको वॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं, वो इनवॉलेंट्री कंट्रोल में, क्योंकि हमारा जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कॉकलिया है, वो जो भी सब कुछ है, कोई अगर आके बोलेगा तो वो अंदर जाता ही है, और ऐसा नहीं है कि एक कान से जाता है और दूसरे से निकलता है, वो अंदर घुस जाता है। तो ये एक बात है। तो जैसे सुशील भाई ने रिवाइज किया, बाबा ने आज मुरली में कहा है कि कैसे हमारे व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ चलन पर कंट्रोलिंग पावर, और दूसरी आत्माओं के भी व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ चलन पर कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बैठी हूँ और अगर कोई आके मुझे कुछ बोलता है व्यर्थ, और अगर मैंने अच्छा हाँ ऐसा, तो उस आत्मा को तो फिर और वो मिल जाएगा ना कि वो आगे सुनाना चालू करेगी। तो जब मेरे पर ही कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो मैं दूसरों के व्यर्थ पे कैसे कंट्रोल करूँ, तो ये बाबा ने बताया उधर। और बाबा ने उसमें कहा कि कंट्रोलिंग पावर अर्थात अगर आपको जो भी स्थिति में स्थित होना चाहो उसमें स्थित हो सको, और जैसे कि आप बाप की याद में बैठो और आपकी स्थिति डगमग हो या आपका बुद्धि यहाँ वहाँ भटक रहा है तो उसको कंट्रोलिंग पावर नहीं कहेंगे, बाबा ने कहा। और इतनी भी एक्सपेक्टेशन रखी, बाबा ने कहा कि एक सेकंड से भी कम समय में अपने संकल्पों को स्थित करना, एक सेकंड से भी कम समय में, मतलब कितना फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड की बात हुई, कि अपने संकल्पों को स्थित करना, इसको कहेंगे कंट्रोलिंग पावर। और जैसे कहा कि महान अंतर को सामने रखो, जब महान अंतर सामने रखेंगे तो हमारी बुद्धि श्रेष्ठ की तरफ जाएगी ऑटोमेटिकली, और बुद्धि व्यर्थ की तरफ नहीं जाएगी। तो इसमें एग्जांपल हम सोच लेते, अगर हम दिन भर इतना बिजी रहे तो फिर अगर कोई सामने से कुछ बोलता भी है तो फिर वो नहीं जाएगा अंदर, क्योंकि बुद्धि कहीं श्रेष्ठ की तरफ जा रही। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमको किसी ने कहा कि शाम को आपको क्लास करानी है, ठीक है, और अगर दिन भर में कोई ऐसी परिस्थिति आई कि कोई हमारे सामने आया और कहा कि कुछ भी बोल दिया किसी ने बहुत बुरा बोल दिया, लेकिन हम माइंड नहीं करते उस चीज को, हम कहते ठीक है इसने बोल दिया ना, इसको बाद में देख लेंगे, अभी हमको शाम के लिए प्रिपेयर करना है, क्योंकि तो जैसे छोटे लाल भाई जी का फोन आ जाता है सुबह में अगर वो 10:30-11 बजे फोन कर देते और बोलते कि आज शाम को क्लास करानी, तो बुद्धि पूरी 8 बजे की प्रिपरेशन के पीछे रहती है। फिर दिन भर में क्या होता है वो इतना इफेक्ट नहीं होता है। तो महान अंतर सामने रखा कि प्रायोरिटी क्या है हमारी, वो क्लास मेरी प्रायोरिटी बन गई, तो मेरी बुद्धि फिर श्रेष्ठ की तरफ जाएगी और व्यर्थ की तरफ नहीं जाएगी, फिर मैं व्यर्थ चिंतन में नहीं लगूंगी। तो ये बाबा ने कहा। कंट्रोलिंग पावर से एक और शब्द साथ में आता है, वो है संयम, बैलेंस। कंट्रोलिंग पावर के साथ बैलेंस। दूसरा, हम और विचार कर रहे थे कंट्रोलिंग पावर पर, तो कुछ 5-6 चीजें निकली। कंट्रोलिंग पावर, जैसे ये एक किंग की विशेषता है ना, राजा की विशेषता है, लेकिन उसका जो बैकग्राउंड या जो उसका जो बेस या फाउंडेशन है वो प्रेम होना चाहिए। कंट्रोलिंग पावर का मतलब ये नहीं कि मैं ऐसा कंट्रोलिंग पावर करूं कि लोग मुझे अप्रोच ही नहीं कर पाए, लोग मेरे पास आने से ही डरे। जैसे हम सोच रहे थे दादी जी, बड़ी दादी जी का एग्जाम्पल, कि दादी के पास वो दादी जैसे सम्राट थी, कंट्रोलिंग पावर थी दादी के पास। एट द सेम टाइम दादी के पास प्रेम भी था। कोई बता रहे थे एक बार बच्चे बैठे थे और दादी हमेशा पूछते थे ना कि क्या चाहिए आप लोगों को, तो एक बच्चे ने उठ के कहा कि दादी चॉकलेट चाहिए। तो दादी ने कहा अच्छा चॉकलेट चाहिए, तुरंत बटन दबाया जैसे कि, और जितना वो क्लास खत्म हुआ इतनी बड़ी बड़ी चॉकलेट सबके लिए आ गई। तो प्रेम भी है और कंट्रोलिंग पावर भी है। और दादी को अप्रोच करने के लिए कोई डरता नहीं था, सब बहुत अच्छे आराम से जा सकते थे दादी के पास। तो और दूसरा, जैसे सांसारिक लोगों में देखेंगे, कोई किसी के पास अगर पद पोजीशन है तो लोग उनके कमरे में जाने को भी डरते हैं। हमें याद है हम BSCS में थे, तो हमको डायरेक्टर के ऑफिस में जाने से पहले सोचना पड़ता था कि है ना, क्योंकि हम थोड़ा डरते हैं उन लोगों से। लेकिन फिर ग्रेजुअली जब उनको जानते हैं तो फिर अप्रोच कर सकते हैं। तो उस हिसाब से कंट्रोलिंग पावर में प्यार का एक वेज होना चाहिए। ऐसे ही बहुत रीसेंट एग्जांपल है, हम मेडिकल ऑफिसर्स का रोस्टर बनाते 15 दिन का। इस बार जो हमने रोस्टर बनाया उसमें ऐसी 6 ड्यूटी लगाई जिसमें उनको डबल ड्यूटीज करनी पड़ रही है, जिसमें वो 16 घंटे से ज्यादा ड्यूटी करेंगे। और रोस्टर तो हमने बना दिया, फिर भेज दिया, सबके पास रोस्टर चला गया, लेकिन कोई भी हमारे पास कंप्लेंट लेके नहीं आया। और यही बात अगर 3 साल पहले होती तो मैम आपने मिस्टेक से लिख दिया क्या, ये डबल ड्यूटी क्यों लगाई हमारी, वो आके कॉन्फ्रेंट करते, मतलब उसको बोलते ये क्यों किया, झगड़ने के लिए आ जाते। लेकिन क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमने अपने आप को परिवर्तन कर लिया 3 साल में, इसलिए वो आते नहीं है। और इनफैक्ट मैंने उनको फोन पर पूछा, अच्छा अभी नाइट किसका, इवनिंग आपका था, बोले मैं ही हूँ नाइट में। तो मैंने बोला अच्छा, और कल आपका क्या ड्यूटी है, बोला मैम कल पीडियाट्रिक्स है। मैंने बोला आप तो 24 घंटे से ज्यादा काम करेंगे, तो आपको तो रेस्ट भी, नो आई विल मैनेज। तो मैं भी बोला कि अरे वाह, मतलब ये लोग अपने आप से ही ऐसे कर रहे, हमारे पास एक कंट्रोल, लेकिन उनको डर नहीं है अभी, ना ही उनको कोई प्रॉब्लम है। डर से नहीं बोल रहे और प्यार से काम कर रहे, नहीं तो चिड़ के काम करते, या तो नहीं आते, या तो HOD के पास जाते, ये सब नहीं कर रहे वो लोग। तो ये भी कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग पावर है। सेकेंड पॉइंट, कंट्रोलिंग पावर जिसके पास है उसके पास धारणाएं होनी चाहिए, तो वो एग्जीक्यूट करता है वो चीजों को। अगर जैसे कि किसी के पास पवित्रता, जैसे संडे की जो मुरली है उसमें बाबा ने राज्य सत्ता के बारे में कहा, और अधिकारी आत्माएं ऐसी होंगी जिनकी स्थूल और सूक्ष्म शक्तियां कंट्रोल में चलेंगी, और जैसे कि उनके पास एक रूहानी पालना है, रूहानी पालना करते हैं वो, प्यार से पालना करते हैं। तो कंट्रोलिंग पावर वाले के पास ये भी एक क्वालिटी होनी चाहिए। और बाबा ने उसमें कहा क्या, धारणा की शक्ति। तो जैसे कि अगर वो धारणाएं मुझ में है तो मैं दूसरों को बड़े कंट्रोल से है ना वो सिखा सकती हूँ। अगर मेरे में पवित्रता है तो मैं पवित्रता के बारे में बताऊंगी तो वो लोगों तक पहुंचेगा। अगर मैं अमृत वेला कर रही हूँ तो अमृत वेला की जो धारणा की शक्ति मेरे में आएगी वो दूसरों तक मैं पहुंचा सकती हूँ बड़ी अथॉरिटी से। सेकेंड है, कंट्रोल की बात जब आती है तो सेल्फ कंट्रोल, गुस्से पर, क्रोध पर बहुत बातें हो चुकी है कि कैसे कंट्रोल करना है, कि क्रोध को कैसे कंट्रोल करना है। ऐसी वो कहानी है ना सांप और सन्यासी की, कि वो सांप को मारते हैं, फिर वो सन्यासी कहता है कि तुम क्यों काटते हो, वो सबको पता है ना। हाँ, तो वो एक सांप होता है तो वो लोगों को बहुत काटता है, तो लोग उसको मारते रहते हैं। तो फिर सन्यासी जा रहा होता है तो वो सांप को कहता है कि तुम ऐसे क्यों करते हो, तुम दूसरों को काटो नहीं। तो फिर सन्यासी तो आगे चला जाता है। नेक्स्ट डे जब सन्यासी आता है तो देखता है कि सांप बहुत जख्मी पड़ा हुआ है। तो कहता है, अरे आज क्या हो गया, तुम जख्मी पड़े हुए हो। तो कहता है कि आपने ही तो कहा कि काटो नहीं। तो सन्यासी क्या कहता है उसको, मैंने आपको काटने के लिए मना किया था, पर मैंने आपको वो बस यही बात है कि लोग उस स्टोरी का मॉरल ये उठाते हैं कि है ना, गुस्सा नहीं करो लेकिन आवाज बड़ी कर सकते हैं या डरा सकते हैं। लेकिन एक्चुअली मॉरल ऑफ द स्टोरी वो नहीं है। मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि कंट्रोलिंग पावर को लूज नहीं करो अपने, लोगों पर कंट्रोल रखो लेकिन उनको उनके ऊपर क्रोध नहीं करो। तो वो एक एग्जाम्पल है। तीसरा, हम सोच रहे थे कंट्रोलिंग पावर की जब बात आती है तब काम विकार की बात आती है। लोग सोचते हैं कि ये एक कंपल्सिव एक्ट है, लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये कॉन्शियस एक्ट है। और इस जैसे बाबा ने कल मुरली में कहा ना कि काम विकार क्या है, जबरदस्त है। और बाबा कहता है कि है ना, गृहस्थ व्यवहार में रहकर तुमको पवित्र रहना है। बाबा ने हमको ऐसा नहीं कहा कि है ना, शादी करो, अलग अलग रहो और पवित्र रहो। ये कंट्रोलिंग पावर है वहां पर भी, वो दो व्यक्तियों के बीच में जिसमें वो अपनी ज्ञान तलवार को बीच में रखते हैं, तो वहां पर भी कंट्रोलिंग पावर की बात आती है जब हम काम विकार के बारे में बात करते हैं। तो बाबा ने कल कितनी सारी बातें बोली ना कि दवाई खा के मुर्दा बन जाते हैं, तो बाहर के लोग ऐसे सब करते हैं। तो यहाँ पर जब हम इस पावर को यूज करेंगे तो काम विकार से भी मुक्त होंगे। तीसरी बात, चौथी बात, यही क्लास में सुना था हमने, जो हार्मोन्स की बात आती है, व्यक्तियों का कोई कंट्रोल नहीं होता अपने आप पर, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ने कहा था योर इंटेलिजेंस इज हाइजेक्ड बाय योर हार्मोन्स। तो हार्मोन्स हमारे कंट्रोल में नहीं होते और कभी कभार हम ऐसे बिहेव कर देते, सामने से कोई स्टिमुलस आता है हमारी लाइफ में और हम उस पर रिएक्ट कर देते, या थोड़े समय के लिए ऐसा होता है कभी कभार हमारी जिंदगी में कि हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं, या हम रो देते हैं, या हम चिड़चिड़ेपन से रिएक्ट करते हैं। तो ये सब क्यों होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस है बॉडी में। लेकिन हम सोच रहे थे कि जब सत्युग में हमारी बॉडी कितनी बैलेंस में है, वहां पर तो कोई इम्बैलेंस नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारे पर डिपेंड करता है बहुत कुछ इसमें। तो जो ज्ञान योग करता है, जो मुरली का अध्ययन करता है, गहराई से इन सब चीजों पर सोचता है, उसके साथ ये नहीं होता है। हम ये पॉइंट क्यों उठा रहे हैं, क्योंकि हमको कई कुमारियों के फोन आते हैं और वो कहते हैं कि हम हमारे कंट्रोल में नहीं रह पाते दीदी। जब हम भाइयों के संबंध में आते हैं, सेवा में आते हैं, तो हमको अलग अलग विचार आते हैं, हमको विकारों के थॉट्स आते हैं, वो ऐसे बात करते हैं। तो वो सब क्यों होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम हमारी मुरली का अध्ययन नहीं कर रहे, गहराई से चिंतन नहीं कर रहे, मंथन नहीं कर रहे। तो ये सब जब करेंगे ना तो हमारे हार्मोन्स भी हमारे कंट्रोल में होंगे। और दूसरी बात, पांचवी बात आई थिंक, पांचवी या छठी, एक्साइटमेंट। लोग कहते हैं ना, ज्यादा एक्साइटमेंट में नहीं आओ, कंट्रोल योर सेल्फ। तो एक्साइटमेंट कुछ भी हो सकता है, जैसे बहुत ज्यादा खुशी होती है तो आउट ऑफ खुशी में जैसे बहुत ज्यादा जोर से हंसना, जैसे मम्मा हमेशा कहती थी ना, आपके दांत नहीं दिखने चाहिए जब आप हंसते हो, तो उतना वो क्या कंट्रोल है हमारे पर। हमारे पास एक सिस्टर है हॉस्पिटल में, वो जब हंसती है तो उसके दांत ही नहीं दिखते। तो हम बहुत कोशिश करते कि हमारे साथ ऐसे ही हो, लेकिन नहीं होता। लेकिन देखो उसका कितना कंट्रोल है। हम रात की क्लास में, रात की क्लास, हाँ तो बहुत अच्छे, तो रात की क्लास में हम जब चर्चा करते हैं और कुछ ऐसी खुशी की बात या हंसी की बात निकलती है, हम सब हंसते हैं जोर जोर से, लेकिन वो नहीं हंसती। वो हंसती भी तो मतलब इतनी कंट्रोल में हंसती है वो, तो उसकी इतनी विशेषता लगती है मुझे वो, आवाज नहीं होना चाहिए। तो ये सब कंट्रोल है हमारी धारणाओं पर। तो कितना हम अपने पर कंट्रोल रखते हैं। रोने की भी बात है, एक्साइटमेंट में एक अलग तरह का एक्साइटमेंट है कि बहुत रोने लग जाते हैं, तो वो रोना भी फेलियर की निशानी है। तो ये कंट्रोलिंग पावर। अब कंट्रोलिंग पावर को जीतने के लिए, कंट्रोलिंग पावर लाने के लिए, ये एक ऐसी पावर है जो ऐसे ही नहीं आ जाएंगी या पढ़ने से नहीं आ जाएंगी, ये पावर प्रैक्टिस से आएगी। तो प्रैक्टिस करने के लिए फिर क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट कि हमको हमारे ट्रिगर्स पता होने चाहिए कि क्या करने से मेरी कंट्रोल कंट्रोलिंग पावर लूज हो जाती है, और कौन सी ऐसी जगहें हैं जहां पर मुझे कंट्रोलिंग पावर को यूज करना है। तो सबसे पहली पॉइंट इसमें ट्रिगर्स में बहुत सारे आ सकते हैं, सबको अपने अपने ट्रिगर्स पता होने चाहिए। जैसे कोई कहता है अगर मैं योग में बैठता हूँ तो मेरी बुद्धि यहाँ वहाँ भटकती है, तो मैं उसको कैसे कंट्रोल में लाऊं। किसी को मोबाइल पर अपना कंट्रोल नहीं, मतलब मोबाइल में मैसेजेस आते रहते हैं तो उसको देखने की इच्छा होती बार बार, ये कंट्रोलिंग पावर। भोजन के ऊपर कितना हमारा कंट्रोलिंग पावर है, हमारा अगर सेंसिटिव नेचर है, अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो हम तुरंत रिएक्ट करते हैं, तो वहां पर कंट्रोलिंग पावर। ऐसे बहुत सारी चीजें आएंगी इसमें, तो अपने अपने ट्रिगर्स हमको निकालने कि कहां मुझे कंट्रोलिंग पावर को यूज करना है। सेकेंड, जब हमने अपने ट्रिगर्स आइडेंटिफाई कर लिए, सेकेंड पॉइंट है कि कुछ ना कुछ टाइम रेस्ट्रिक्शंस डालना उसमें, कि अगर ये ऐसा होगा तो मैं इसको डिले करूंगी इससे। जैसे हम, क्योंकि हम कंट्रोलिंग पावर पर पढ़ रहे थे तो हमने एक्सपेरिमेंट किया, व्हाट्सएप बार बार चेक करने की आदत व्हाट्सएप, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम व्हाट्सएप को सुबह 9 बजे चेक करेंगे, 1 बजे चेक करेंगे, 5 बजे। अब हमारा होता है कि जब हम हॉस्पिटल से बाहर होते हैं तो हमको चालू ही रखना पड़ता है, पर जब हम हॉस्पिटल के अंदर हैं तो हमको कोई इमरजेंसी नहीं है। हम सोच के एक दिन हमने किया ऐसे, थोड़ी देर में हमारे घर से फोन आता है कि बाबा व्हाट्सएप पे रिपोर्ट भेजिए, देखो और फोन करो वापस। तो मतलब बंद रखा, 1-1.5 घंटा बंद रखा, जैसे ही चालू किया दूसरे भी मैसेजेस आ गए, छोटी बहन मेरी मेडिसिन फिनिश हो गई है, कंटिन्यू फॉर 10 मिनट, ऐसे सब। मतलब हमको लगा कि कैसे उस पर कंट्रोल करें, तो कुछ ना कुछ टाइम रेस्ट्रिक्शन डालने पड़ेंगे अपने आप पर, कि इतने से इतने टाइम तक उसको बंद रखेंगे, इतने से इतने टाइम तक उसको चेक नहीं करेंगे। कोई कोई ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ थोड़े समय के लिए वाईफाई एरिया में जाते हैं तभी उनका चालू होता है, बाकी समय पे वो यूज नहीं करते, तो बहुत अच्छी बात है वो। तो जैसे व्हाट्सएप, तो टाइम रेस्ट्रिक्शन, जैसे बाबा कहता है कम खर्च बाला नशीन, लेकिन किसी को शॉपिंग करने की बहुत आदत है कि बस जाए और शॉपिंग करे। जैसे हमने ठंडी के सीजन में हमारे साथ ऐसा होता है, हमको ऐसा लगता है कितने स्वेटर, जितने भी स्वेटर बाय करो कमी है, तो बार और ऐसा लगता है बस ठंडी, मतलब क्या करे इसका, और स्वेटर पे स्वेटर। तो हमने बोला कि अब नहीं स्वेटर बाय करेंगे, अब मम्मी आएगी ना उसके बाद, या वो बहन आ जाएगी ना, फिर हम शॉपिंग जाएंगे। तो हमने उसको डिले किया। जब हम कोई चीज को डिले करते हैं ना, तो शायद उसके बाद हमको उसकी नेसेसिटी की जरूरत नहीं होती, हमको लगता है कि ये जरूरत नहीं है, मेरे पास स्वेटर है, मेरे पास जैकेट है, तो उसको डिले करना। तो टाइम रेस्ट्रिक्शन, टाइम बाउंड डालना। तीसरी पॉइंट, डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन या डाइवर्जन। कुछ भी अगर माइंड कहीं पर जा रहा है तो उसको, जैसे कि योग में अगर कोई बैठता है और उसको कोई कंट्रोल ही नहीं है, उसका माइंड भटकता है यहाँ वहाँ, तो कैसे उसको जैसे हमने वो कोर्स अटेंड किया था ना, तो 8 स्टेप्स ऑफ राजयोग का मेडिटेशन थे, तो उसमें हमको वो सिस्टर ने बताया था जब माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है तो क्या करो, जब आप योग में बैठे हो तो क्या करो।
तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे करो, तो जब आप ऐसे ऐसे करोगे तो आपका माइंड जहां पर भी जा रहा होगा करके,
तो ये देख लिया ना, ये हाँ, तो हाथ जोड़ के कुछ कुछ ऐसे ऐसे करो। तो क्या होता है, जब देखो बाहर के लोग जब मेडिटेशन करते तो वो लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते, वो लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस क्यों करते, क्योंकि पूरा माइंड उनका ब्रीदिंग पर आ जाता है, तो बाहर नहीं भटक रहा होता है पर ब्रीदिंग पे होता है। तो जब माइंड कहीं पर भी भटक रहा होता है ना, तो उसको फिर ऐसे ऐसे कुछ करो, तो ताकि वो वापस आ जाए, और फिर वापस उसको ऐसे नहीं, इतनी जोर से नहीं करना, नहीं तो सबको मालूम पड़ेगा। तो वो हाँ, मालूम ना पड़े किसी को, ऐसा कुछ करो, अपने फिंगर्स को हिलाओ या ऐसे रब करो, तो माइंड पूरा उधर आ जाएगा, बाहर जो भटक रहा था, तो उसको डाइवर्जन मेथड बोलेंगे। नहीं, पाव भी नहीं हिलाना है। देखो ये भी एक हमने सोचा था कि है ना, कंट्रोलिंग पावर के लिए ना, जब हम योग में बैठते हैं ना, तो बाजू वाले से हम रेस कर सकते हैं। जैसे रतन मुनि दादी ने बताया था एक क्लास में, कि जब वो लोग योग करते थे तो एक दूसरे से रेस करते थे कि हमारा हाथ भी ना हिले, ये भी कंट्रोलिंग पावर है ना। जब हमारी बॉडी इतनी स्थिर होगी तब माइंड स्थिर होगा, तो वो भी एक कंट्रोलिंग पावर है। सूक्ष्म में प्रैक्टिस करनी है उसकी, तो ये एक हो सकता है। कुछ कुछ हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, तो ऐसी जगह ढूंढना चाहिए। हाँ, बहुत बहुत प्रैक्टिकल है, ऐसी जगह ढूंढो जहाँ मच्छर नहीं है। मुक्ति मतलब फिर डाइवर्शन मेथड में, अगर योग में बहुत लोगों की आदत होती है कि अपना है ना दिन भर की दिनचर्या सोचते बैठते हैं या तो टाइम टेबल फिक्स करने की कोशिश करते हैं, तो उसको भी है ना टाइम फिक्स करना है कि ये टाइम पर मैं अपनी दिनचर्या फिक्स करूंगी। योग का टाइम है ना दिनचर्या फिक्स करने का टाइम नहीं है, भले वो योग के बाद 10 मिनट 5 मिनट आप कर सकते हैं, परंतु बुद्धि इतनी भटकती है उसमें भी, तो वो हमको ध्यान में होना चाहिए, डाइवर्जन मेथड। चौथा मेथड, किसी चीज में एक्टिवली इन्वॉल्व हो जाना। जैसे किसी को बोलने की बहुत आदत है, वो अपने कंट्रोल पे ही नहीं रख पाता। हमारे साथ एक भाई था वहां पे ORC में, उसको इतनी बोलने की आदत थी, जब वो खाना खाने बैठता था जिस भी डाइनिंग टेबल पे बैठता था वो, तो है ना उनको पता मतलब ऐसे बात करेगा, मतलब उसके पास इतनी सारी बात थी बोलने के लिए कि वो हर टेबल पर नहीं बात कर सकता था। तो अब बोलने पर जब कंट्रोल करना है ना, हाँ फटाफट एक मिनट, मच्छर ने तो बहुत टाइम दिया मेरा, तो फिर उसके बाद उसको कहीं ना कहीं डाइवर्ट, उसको कहीं ना कहीं एक्टिवली इन्वॉल्व करना पड़ेगा, चाहे वो जाके क्लासेस करवाए या जाके 7 डेज कोर्स करवाए, जहाँ पे उसकी बोलने की चीज निकल जाए और वो अपने कंट्रोल करे बोलने पर। तो ये हो गया। फिर उसके बाद जिस भी चीज से हमको मुक्ति चाहिए उस पर रिसर्च करे, उस बिहेवियर पर। जैसे कि अगर किसी को खाने की, जिसकी को किसी को ऐसा भूख बहुत लगती है, तो उस पर रिसर्च करें कि ऐसा क्यों है। जब हम किसी चीज पर रिसर्च करेंगे, काम करेंगे, तो फिर वो हो जाएगा। किसी को काम विकार के बहुत संकल्प आते हैं, तो पढ़ो फिर प्योरिटी के ऊपर, सेलिब्रेसी के ऊपर पढ़ते रहो, जितनी भी क्लासेस है सुनते रहो, तो फिर वो कंट्रोलिंग पावर आ सकती है। और फिर हमने सोचा कि जैसे कि हमेशा कहते हैं स्वराज्य अधिकारी, ये स्वमान का जितना हम अभ्यास करेंगे उतना हमारी कर्मेंद्रिया हमारे कंट्रोल में आएंगी। और लास्ट है जैसे कि प्योरिटी, जिसके पास पवित्रता की शक्ति है ना उसके पास कंट्रोलिंग पावर है, मतलब ये बीज है, फिर जितना प्योरिटी उतना कंट्रोलिंग पावर। उस दिन हम योग में बैठे थे और हमको एक वर्ड टच हुआ, सरेंडर। जब जो सरेंडर हो जाते हैं ना, जो समर्पित हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली उनमें मर्यादाएं आ जाती है और कंट्रोलिंग पावर आ जाती है। ऑटोमेटिकली उनका जो व्यवहार होता है, कैरेक्टर होता है, वो पूरा चेंज हो जाता है, उनका डाइवर्ट ही हो जाता है, उनमें ऑटोमेटिकली ये पावर आती है। हमारे साथ एक बहन वहां पर थी, फोटोग्राफ खींच रहे थे, तो फिर है ना एक फोटो खींचा और बोला टर्न टर्न, तो वो बहन को बोला इधर खड़े हो जाओ, एक भाई उसके बाजू में आके खड़ा हो गया और फोटो ले लिया। वो सेंटर पर घुमा रही थी, तो फोटो के बाद वो इतनी डर गई और कह रही कि बाप रे ये फोटो फेसबुक पे जाएगा, व्हाट्सएप पे जाएगा, अभी मतलब है ना बड़ी दीदी क्या बोलेगी, क्योंकि मैं एक भाई के बाजू में खड़ी थी। तो हमने सोचा, हमने उसको कहा आप इतना सोचते हो, तो बोला हाँ सोचना पड़ता है, हम लोग सेंटर पर रहते हैं। तो देखो ऑटोमेटिकली मर्यादाओं में चलने की आदत हो जाती है, कहीं ना कहीं वो कंट्रोलिंग पावर आ जाती है जब समर्पित यूज करते। इसलिए हम अपने आप को क्या समझते बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बस एंड में यही बोलेंगे कि कंट्रोलिंग पावर हमको बहुत अंदर से प्यूरिफाई करती है, बहुत शुद्ध करती है, और एक बहुत वेल मैनर्ड इंसान बनाती है जब हमारे पास ये कंट्रोलिंग पावर होती है। तो ओम शांति।